आप देखिए, कोई भी चीज कबूल नहीं होती किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से, किसी मॉल की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, जब तक एग्जैक्टली वो ना हो जो मांगे। बस आप देखिए कि आप शिनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, वो आपका बे फॉर्म मांगते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, किसी जगह आपका हो सकता है मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, आप उसकी जगह कुछ और पेश करें तो ले लेंगे। आपका वीजे का प्रोसेस, आपके पासपोर्ट का प्रोसेस, क्या 19-20 का पेपर कबूल हो जाता है? लोगों को आपने दफ्तरों के चक्कर लगाते देखा होगा, एक पेपर मिसिंग है, नहीं काम हो रहा। लिखिए, क्यामत के दिन कोई एक पेपर भी अगर मिसिंग हुआ तो कबूलियत नहीं होगी। तो लिहाजा तौहीद सारे अमाल की असल है, अगर तौहीद नहीं तो सारे अमाल बेकार और लग और बेसूद हैं। तौहीद नहीं तो ईमान नहीं, तौहीद और शिर्क एक दूसरे की जिद हैं। तो एक चीज अपने लिए नोट कीजिए, नमाज पढ़ने से पहले अहम चीजों में से एक चीज आपका अकीदा है। अगर अकीदे में तौहीद नहीं, मसल्ला ना करे तसलीस है, तो क्या आप कभी किसी तसलीस के अकीदे को रखने वाले यानी ट्रिनिटी वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे? आप कहते नहीं, वो तो ट्रिनिटी को मानता है, वो तो क्रिश्चियन है, वो तो तसलीस को मानता है, वो क्यों पढ़े? तो बस लिखिए, मुसलमान होते हुए भी अगर सहीहुल अकीदा शख्स नहीं तो फिर नमाजें वही हैं जिसको कुरान क्या कहता है, आमिलतुन नासिबा। तो यहां आप एक ये भी छोटी सी बात समझ लें कि नमाज पढ़ने के साथ साथ ही, बल्कि उससे भी पहले, हमें तौहीद को समझना है। तो थोड़ी सी चंद बातें तौहीद की अहमियत पे करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत निसा में आयत 48 में क्या हुक्म दिया, अगर आप इसको देख लें तो आपको बात बड़ी ही समझ आती है। इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ताला शिर्क को नहीं बख्शेगा, और इसके अलावा जिस गुनाह को जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करता है। 3 सेकंड जरा इस एक आयत पे गौर करें। आज लोग कहते हैं अकीदे की बात ना करो, नहीं तौहीद की बात ना करो, नहीं ये नहीं वो नहीं, बस जी अमल अमल अमल। देखिए, मैं मिसाल के लिए समझाना चाहती हूँ, निकाह पहले होता है कि बच्चा पहले होता है बच्चा ही, फर्क क्या है, एक हलाल बच्चा और एक नाजायज बच्चा, बस उसको समझिए। जब तक आपका अल्लाह के साथ बेहतरीन अकीदा नहीं, अल्लाह और रसूल का मुकाम नहीं समझते, तो फिर उसके बाद आप कैसे आगे चलेंगे? तो तौहीद बड़ी अहम है, तमाम अमाले साले की असल तौहीद है, तौहीद के बगैर निजात नहीं, शिर्क की मौजूदगी में निजात नामुमकिन है। और आप कह लें कि तौहीद और शिर्क एक दूसरे की जिद है, अगर तौहीद नहीं तो सारे अमाल बेकार और लग्व और बेसूद हैं, और ईमान ईमान नहीं, तो फिर हमने थोड़ा सा इस पे भी गौर करना है। ये कहाँ से पता चलता है? लोग कहते हैं मैं कौन सा कोर्स करूँ कि मेरा अकीदा ठीक हो जाए, ये कुरान उसका कोर्स है। 2/3 ऑफ कुरान इज अबाउट तौहीद। ये जो आप कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, 3 दफा पढ़े तो एक कुरान का अजर है, हदीस सही है बिल्कुल, मुराद ये है कि तौहीद का मौजू इखलास है, और जिसको सूरत इखलास आ गई और उसकी समझ आ गई तो आप कह लीजिए कि उनका इंशाल्लाह 1/3 ऑफ ईमान जो था वो बिल्कुल सही हो गया। एक और आयत नोट कीजिएगा, और ये भी बहुत ही प्यारी आयत है कि जिसमें सूरत अल अनाम 82 है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइक लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से मुलव्वस नहीं किया, तो ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ जुल्म से क्या मुराद है? शिर्क मुराद है। जी सही, बुखारी की रिवायत अगर आप नोट करना चाहें इसी आयत की तफसीर में 4629 और इसी तरह 4776 में तफसीर बयान की गई इस आयत की, कि यहाँ शिर्क मुराद है जुल्म से, क्योंकि सहाबा घबरा गए थे कि अल्लाह के नबी कौन है जिसने कोई छोटा मोटा जुल्म ना किया हो। तो मुराद क्या था कि शिर्क क्या है? अल्लाह के मामले में जुल्म है, यानी आप अल्लाह का हक किसी और को देते हैं। तो क्या पता चला कि कुछ लोग ईमान लाने के बाद भी शिर्क करते हैं? आप एक आयत नोट कीजिए और जाकर उस पर गौर करें, इसने मुझे तो हिला दिया था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको समझा था, और ये सूरत यूसुफ आयत नंबर 106 है। पहले तो मैं आपसे ही पूछूं, कितने लोग सोचते हैं कि वो शिर्क करते हैं? एक भी नहीं कहेगा, जद्दी पुश्ती मवाहिद हैं, हम तो मोमिन हैं, हमारे अब्बा तो ये थे, हमारे दादा तो हाफिज थे, वो थे। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, लेकिन कुरान तो कुछ और ही कहता है, क्या? वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाही इल्ला वहुम मुशरिकून, और नहीं ईमान लाते अक्सर उनमें से अल्लाह पर जबकि वो तो मुशरिक हैं। इसने मुझे भी एक दफा तो सोचने पे मजबूर किया था कि अल्लाह तो खुद कह रहे हैं कि कलमा पढ़ने के बावजूद कुछ मुशरिक होते हैं, तो कहीं मैं तो वो नहीं हूं। आपको अपनी फिक्र लगी, गम लगा? फिक्र कीजिए, अल्लाह ताला का हक पहले के बंदों का पहले? सारी दुनिया को आप हक देते रहे, अगर आपने अल्लाह का हक मार दिया तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या पता चला, नमाज की कबूलियत में से शर्तों में एक शर्त क्या है? तौहीद। आइए जरा नमाज की कबूलियत की चंद और शराइत देखते हैं। देखे ना, आप 1 पाउंड खर्च करें सदके में दें या 100 पाउंड दें, आप चाहेंगे क्या? कबूल हो, उसका अजर मिले, या आप जिसको भी दे रहे हैं उस पर खर्च हो। आप 1 सालन बनाएं या आप 10 खाने बनाएं, क्या चाहते हैं? कि मेहमान खा ले, जिसको आपने भेजा खुशी से खाए। लिखिए दिन रात जो आप और मैं काम करते हैं नमाज का। तो नमाज की कबूलियत की शर्त अव्वल क्या है? कि अल्लाह ताला को उसकी जात और सिफात में यकता माना जाए। ये नाम ही नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक पूरी मेथेडोलॉजी है। यानी ना उसकी जात जैसा कोई, ना उसकी सिफात जैसा कोई, ना उसकी बीवी है कोई, ना उसकी औलाद है कोई। अल्लाह के नूर का टुकड़ा नहीं, यानी नूरों में नूर अल्लाह का दावा गलत है। अल्लाह ताला किसी इंसान के अंदर उतर आते हैं नऊसु बिल्ला। आपको पता है आज एक अकीदा कितना कॉमन है? इब्ने अरबी का नाम सुना होगा, माजी की एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी, उसके अशार हैं और उसकी बातें हैं। वो कहता है नऊसु बिल्ला, कुत्ते में भी मुझे रब दिखता है और खिंजीर में भी, क्योंकि मेरे रब का बर्ताव है। आज आपने सुना अंदर तू बाहर तू, हलूल कहते हैं इसको। आप हिंदुओं से बात करें, आप सिखों से बात करें, आपको सबसे पहले यही कहेंगे भगवान तो मेरे अंदर रहता है, ईश्वर तो मेरे अंदर है। गलत है। अकीदा है उम्मत मुस्लिमा के कि अल्लाह अपने वजूद के साथ सातवें आसमान पे, हर रात आसमान दुनिया पे आता है। लेकिन आम तौर पे अल्लाह का अपना वजूद, जैसे इस वक्त मेरा आपका ये वजूद है ना, पहली बात अल्लाह का वजूद है, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्थ है, वो अपने वजूद के साथ सातवें आसमान पे। अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान जिसने अर्श पे अपना इस्तवा रखा। हाँ, अपने इल्म में, अपनी समात में और अपनी बसारत में दुनिया में है। अल्लाह ताला के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इस तरह हलूल करना। लोग कहते हैं बाबा जी में अल्लाह आ गए नऊज़ुबिल्ला, और 4 करोड़ बुतों की पूजा करते हैं हिंदू मजहब में। वो सारे बुत नहीं है, मूर्तियां तो थोड़ी सी हैं। वो जैसे उन्होंने कुछ नाम रखे होंगे ना उनके अपने तौर पे, जो दौलत की देवी को काली देवी को फुला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने हर चीज की पूजा की, पीपल के पत्ते की पूजा, हनुमान की पूजा, बंदरों की पूजा, जिससे डरे उसकी पूजा, जिसकी उम्मीद रही उसकी पूजा। तो ये सब गलत है। इस तरह वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद खुला शिर्क है। अब आप नहीं जानते तो अभी बस दुआ कर लें कि अल्लाह मोहलत दे कि हम ये मौजू भी सीख के दुनिया से जाएं। और इसी तरह ये भी एक शर्त है कि ये माना जाए कि कायनात के तमाम उमूर सिर्फ अल्लाह ताला के कब्जे और इख्तियार में। ये जो कोरोना वायरस का फितना है इस वक्त, कौन इसको दूर करेगा? अल्लाह करेगा। हम कोशिश करेंगे, हम मीन्स यूज करेंगे, हम हुकूमत के सारे किए हुए जो फैसले हैं उसको दिल की खुशी से या ना खुशी से मानेंगे। लेकिन इसके बावजूद ईमान क्या है कि अल्लाह चाहे तो सबसे आइसोलेटेड बंदे को इस बीमारी से मार दे, और वो बंदा जो अपने काम में लगा हुआ है और दुआएं भी पढ़ता है और अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह उसको ठीक कर रख दे। फिर इस तरह एक और अकीदे की शर्त लिखी कि इज्जत और जिल्लत उसी के पास है, मत लोगों से इज्जत की भीख मांगा करें। सास को बड़े बड़े कड़े पहना दो, बड़ी इज्जत होगी मेरी बेटी की। कोई नहीं करती ऐसी सासें, वो और तोल तोल के देखती हैं कि अंदर क्या और बाहर क्या है। फिर इसी तरह हर नेक और बद का वही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है, यानी अगर बद है तो नेक भी उसी से ही मांगता है। लोग क्या कहते हैं, नेक लोग देते हैं, साढ़ी इन्ना अगे इन्हों की रब अगे, सानू देंदा नहीं इन्हों की मोड़दा नहीं। कभी ये जुमले सुने, कैसे शिरक है हमारे जाहिल पंजाब के कल्चर में, कि जहां बेचारों को कुछ नहीं पता वो बाबा जी की कब्रों पे खड़े हुए इस तरह के शिरकिया लफ्ज बोल रहे होते हैं, हालांकि वो बाबा जी सारी जिंदगी लोगों को तौहीद सिखाते गए। फिर इस तरह एक और शर्त है कि नफा और नुकसान का मालिक भी वही है और उसके मुकाबले में किसी को जरा सा भी इख्तियार नहीं है। दिल खोल दीजिए। मैं अक्सर कहती हूं, और मैं कहती हूं कि लोगों को अगर जीने का ये रंग दिख जाए ना तो उनको खुशी का असल राज मिल जाए। एक दिन तो अल्लाह आपको जॉबलेस छोड़ता नहीं है। कितने खुशकिस्मत हैं आप कि अल्लाह ने आपके वक्त को अपने लिए चुन लिया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हर चीज पर उसी की हुकूमत है। किसी का इख्तियार नहीं है, कोई उसके मुकाबले में किसी को पनाह नहीं दे सकता। ये शर्तें हैं, ये एक एक बात पे कम अज कम एक एक घंटा बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त चूंकि बुनियादी मौजू ये नहीं है, ये मौजू इसलिए बीच में आ रहा है कि नमाजें तो आप पढ़ें और आपके अकायदे दुरुस्त नहीं, तो फिर बात तो पूरी नहीं होगी ना। असल चीज काबिलियत नहीं है, कबूलियत है। फिर ये अकीदा रखिए कि अल्लाह ही हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसके अलावा हर चीज को फना है, और ये भी सिर्फ अल्लाह का हक है कि वह लोगों की इनफिरादी और इज्तमाई जिंदगी गुजारने का तरीका बताए, यानी दीन नाफिज करने का इख्तियार अल्लाह का है। क्या हलाल है क्या हराम है अल्लाह का अख्तियार है। दीन साजी उसी का हक है। आप में अपनी मर्जी से 5 की जगह 10 नमाजें नहीं कर सकते, या 5 की बजाय 3 नहीं कर सकते, ये अल्लाह का हक है और हकीकी इताअत सिर्फ अल्लाह की है। और एक और बात याद रखिएगा, और वो क्या है कि चूंकि अल्लाह ताला ने ये दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें दिया है, तो अल्लाह की इताअत का वाहिद जरिया वो अहकामात हैं जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें दिए, और सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हो ने इसको उम्मत तक पहुंचाया, आगे से लोगों तक, और फिर हदीसों में आइमाए कराम ने लिखा। तो ये तो एक पूरी चेन है। क्या पता चला, किताब और सुन्नत की बजाय आप किसी को भी पकड़ लें, किसी नाम के साथ, खूबसूरत से खूबसूरत नाम पे, खूबसूरत से खूबसूरत फिरके के नाम पे, मसलक के नाम पे, किसी बुजुर्ग के नाम पे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप देखिए यूके में हैं, यहाँ की पार्लियामेंट है ना, वो कवानीन बनाती है ना, या आप और मैं चंद ऑर्गेनाइजेशंस छोटी छोटी लेकर कवानीन बनाने लगे यूके के, कभी नहीं कबूल करेंगे। तो किसी पार्लियामेंट को ये हक नहीं है कि वो मुसलमानों की जिंदगी और मौत के तमाम मामलात पर कोई ऐसा कानून बनाए इंटरनेशनल और नेशनल के जिससे अल्लाह का कोई हुक्म टूटे। तो ये सारी बातें, इनको मानना नमाज पढ़ने से पहले लाजमी है, और इंशाल्लाह इस सारी सीरीज में जो कहा जा रहा है ना, इसी पे अमल भी होगा, इसी पे आपने मैंने गौर व फिक्र भी करना है। और तौहीद सीधी हो गई ना, थोड़े थोड़े अमल भी काफी हैं। हम बड़े बड़े अमलों की ख्वाहिश में छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ एक और छोटी सी बात अपने लिए नोट कीजिएगा, एक दफा सीखना है, बार बार तो सीखने की जरूरत भी नहीं है ना। और आप देखेंगे कि इस सीरीज में जितनी अहादीस यहाँ पेश की जाएंगी, एक बड़ी ही मारूफ किताब है, अल-कौलुल मकबूलु फी तखरीजी सलातुर रसूल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को समझने के लिए कबूलियत वाला कौल। तो क्या पता चला कि अल्लाह की बारगाह में किसी अमल की कबूलियत का इन्हिसार 3 चीजों पे लिख लें। मैं साइड नोट दे रही हूं, 3 चीजें सीधी करें नमाज पढ़ने से पहले। नंबर एक, अकीदा दुरुस्त हो। दूसरी बात है, नीयत दुरुस्त हो। और तीसरी बात क्या है, अमल भी दुरुस्त हो। बात वाज़ेह, फिर देखिएगा ये कबूल होगी। और अगर इनमें से किसी एक में कमी हुई, सारी ही नमाज, क्या सारा दीन आपके मेरे हाथ से उठा लिया जाएगा। और अल्लाह ताला आपको मुझे कबूलियत वाले काम करने की तौफीक दे। बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है, इसलिए कि नमाज दीन का इंतहाई अहम रुकन है। और अल्लाह के नबी ने हजरत मास बिन जबल रजी अल्लाह अन्हों को यमन भेजा, तो फरमाया फिर इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। ये सही बुखारी के लफ्ज हैं, यानी एक नए शहर में जा रहे हैं और लोगों को क्या बताएं कि नमाज क्या है। तो इससे आपको, मुझे उम्मीद है, काफी हद तक नमाज की अहमियत और उसके बारे में पहले भी पता था, मैं ये नहीं कहती कि कोई नई बात है, लेकिन आज से एक एक चीज लिखते जाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। और अल्लाह के नबी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे मास बिन जबल को, वो क्या थे, फालिम हम अन्नल्लाहफ्तरदा अलैहिम 5 सलावातिन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन, फिर इनको बताओ कि अल्लाह ताला ने दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। और फिर आपने ये भी फरमा दिया, सल्लु कमा रअयतु मुनी युसल्ली, इस तरह नमाज अदा करो जैसे मुझे करते हुए देखते हो। और यहाँ एक छोटी सी बात और भी आपको फायदा देगी, दुनिया की हर जुबान जो मुसलमान बोलते हैं उसमें नमाज के मौजू पे बातें हुई, लेकिन आपके मेरे लिए जो रिसोर्स है ना, वो अरबिक जुबान है। ये बात मैंने इसलिए बोल दी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जिन 3 मुल्कों में उर्दू बोली जाती है, हमारी नमाजें बहुत मुख्तलिफ हो गई उर्दू तर्जुमों की वजह से। तो आज भी अहादीस का एक खजाना अरबी जुबान में महफूज है। किताबें भी अरबी की मौजूद हैं, अहादीस तो हैं कि जिनको भी हमारे उर्दू कल्चर में रसाई नहीं हुई, तो इंशाल्लाह बिल्कुल मेन रिसोर्सेज तक चलें। जैसे आप देखिए ना कि दूध खालिस कहाँ से मिलेगा, अब आप ये नहीं कहिएगा एजरा से। एक बच्ची ने मुझे कहा था, अमेरिका में ये सवाल किया था, आज से शायद 15 साल पहले किया होगा या उससे भी पहले, तो मैंने कहा दूध कहाँ से मिलता, कहती फिएस्टा से। फिएस्टा वहाँ का एक बहुत बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि ना उन्होंने भैंस देखी ना भैंस का दूध निकलते देखा, तो मुझे फिर उनको मानना ही था ना। लेकिन आप देखिए जो चीज जहां से निकलती है ना वहां से खालिस होती है। सोना खालिस कहां से होगा, जहां से निकल रहा है। बाद में खालिस भी हो सकता है, खोट भी है। दूध में हो सकता है कोई पानी मिला दे ना मिला है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा ये बात कि दीन खालिस वहां से मिलेगा जहां से उठा। हम ये नहीं कहते आज के अरब, अरब और अजम की बात नहीं है, हम बात करें अरबी की या कुरान सुन्नत की, वो ओरिजिनल किताबें जिधर से दीन मिला। तो किताबों सुन्नत की इत्तबा इसलिए भी लाजमी है कि ये हमारे दीन का रिसोर्स है। सूरत मायदा आयत 3 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए इस दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया इस्लाम की हैसियत से। 9 ज़िलहज को यह आयत 10 हिजरी में मैदान अराफात में उतरी थी, और इसके बाद सिर्फ 3 माह तक आप इस दुनिया में रहे और ये कामिल और अकमल तरीन दीन उम्मत को सौंप कर अपने रफीके आला से जा मिले। क्या पता चला कि आपको मुझे अधूरा दीन नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी दीन ही पूरा नहीं था तो फिर ये क्या था और वो क्या था, हालांकि आप देखिएगा कि दीन पूरा है, अभी हमारा इल्म पूरा नहीं है। पूरा कुरान कितने मुसलमान पढ़ते हैं, इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे गलत चीज़ों से और गलत बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने से। तो हमारे दीन का एक खूबसूरत हुसन क्या है कि ये अकमल भी है और अतमम भी है, तमाम भी हुआ और मुकम्मल भी हुआ। एक होता है जैसे तैसे चीज़ पूरी कर दी, ख़त्म करो वह ख़त्म हुआ, नहीं, हक भी अदा किया अल्लाह के नबी की बातें सारी जो हमारे तक पहुंची हैं, और इसी तरह दूसरा भी तरीका था। तो इससे कम अज़ कम आपको ये यकीन आ रहा होगा इंशाअल्लाह ताला कि जो बात आपको सिखाई जाएगी उसमें किसी का तासुब नहीं है। कहीं भी आप अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी और तीसरे का नाम नहीं पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपने फरमाया, एक हदीस नोट कीजिएगा, और वो क्या है, तरक तुफी कुम अमरैन लन तदिल्लुमा तमस्सक तुम बिहिमा किताब अल्लाही व सुन्नत नबी जी ही। मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम इन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। हम में से कोई गुमराह होना चाहता है ना उस बेला, कोई भी नहीं। और ये रिवायत बहुत सारी किताबों में, सुनन अल कुबरा है बहकी की, इसी तरह मौता इमाम मालिक में भी है, और बहुत ही मरूफ रिवायत है। तो फिर आप, मैं चाहते हैं कि हम हिदायत पर रहें। नेविगेटर का नाम सबने सुना, GPS, और यहाँ क्या कहते हैं, टॉम टॉम। जिसने टॉम टॉम लगाया होता है वो भटकता नहीं है ना अमूमन, और जरा से इधर से उधर हो तो वो फौरन फिर उसको यू टर्न करवा के ले आते हैं ना। कुरान सुन्नत हमारा GPS है, इसको GPS बना लीजिए। क्या पता चला कि इस्लाम किताब और सुन्नत में महदूद है। और यहां से एक और बात भी नोट कर लीजिए, मसला और फतवा सिर्फ वही काबिले कबूल है जो कुरान और सुन्नत की दलील के मुताबिक हो। एक और रिवायत लीजिए जिससे आपको और ज्यादा सुन्नत की अहमियत का यकीन आ जाएगा। आपने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्ना इल्ला मन अबा, कालू या रसूल अल्लाही व मन अबा, काला मन अताअनी दखल अल जन्ना व मन असानी फकद अबा। मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल इनकार करने वाला कौन है? आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसने इनकार किया। सही बुखारी की रिवायत है 7280। है हम में से कोई एक जो इनकार करे? अल्लाह ना करे। मुराद ये कि जानते बूझते जिद करना, सही हदीस सामने आ जाए लेकिन उसको छोड़कर किसी के कौल और किसी के फतवे पे बात करना और हदीस को ना मानना। एक और रिवायत लीजिए, इरबास बिन सारिया हैं रावी, कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और बड़ी पुरअसर नसीहत की, ऐसा वास था कि सुनकर हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। दुआ करें कभी हमें भी तो रोना आए, हम तो इतने सख्त हो गए कि हमें बड़ी से बड़ी बात सुनकर भी रोना नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारे दिल दहल गए। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये वास तो ऐसा है जैसे किसी रुखसत करने वाले का होता है। इसलिए मैं खास वसीयत कीजिए। फिर आपने फरमाया, हदीस यहां से नोट करिएगा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की जायज बात मानना और सुनना, अगरचे तुम्हारा अमीर हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। मेरे बाद जो तुम में से जिंदा रहेगा वो सख्त इख्तलाफ देखेगा। इस वक्त तुम मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन का तरीका लाजिम पकड़ना। इसे दाढ़ों, दाढ़ क्या थी, ये साइड के दांत मजबूती से जो पकड़ते हैं, अपनी दाढ़ों से मजबूत पकड़ते रहना और दीन के अंदर नए नए कामों यानी तौर तरीकों से बचना, क्योंकि दीन में हर नया काम बिदत है और हर बिदत गुमराही है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ये अबू दाऊद की रिवायत है 4607 और भी इसके रेफरेंसेस मौजूद है। तो क्या पता चला कि कुल्लु बिदअतिन दलाल व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, हर बिदत गुमराही है ख्वा लोग उसको अच्छा समझें। ये भी एक शोशा है जो हमारे यहाँ दिया जाता है, बिदत हसना और बिदत गैर हसना या गुमराही का। तो बस इतनी बात समझ लीजिए कि हदीस के मामले में छानबीन कीजिए, क्योंकि वंजलना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। और हमने आपकी तरफ ये कुरान यानी जिक्र नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए बयान करें जो कुछ इनकी तरफ नाजिल किया गया और ताकि वो गौर व फिक्र करें। वही सूरत नहल 44 चल रही आयत, और इसको जुबानी याद कर लीजिए तो इंशाल्लाह हर सवाल के जवाब में आप यही बोल सकते हैं। एक और हदीस नोट कीजिएगा, अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहू माहू। याद रखो, मुझे कुरान मजीद और इसके साथ इस जैसी एक और चीज दी गई, और वो क्या थी, हदीस। ये अबू दाऊद की रिवायत है 4604। तो क्या पता चला, बड़ा अहम असूल बताने लगी हूँ दीन इस्लाम का। जिस तरह अल्लाह की इताअत फर्ज है ना हम पर, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी फर्ज है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह की बात तो मानूंगी लेकिन रसूल की नहीं मानूंगी। अच्छा, ये बात अगर कुरान में है तो फिर तो ठीक है, माननी ही पड़ेगी। हदीस है तो फिर इट्स ओके, नॉट ओके। कुरान और हदीस दोनों लाजिम मलजूम हैं, और इसको अपनी जिंदगी में पूरी जगह दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको तराजू के दो पलड़ों की तरह हमारे सामने रखा है। तो कभी भी ना बोले, आम खवातीन को तो हक ही नहीं है ये हदीस है ये बात है, रात जाते लोग लुकमे दे रहे होते हैं। चुप रहिए, ये उलमा का काम है। जब तक कोई पूरी सनद के साथ चीज सामने लिखी भी ना मिले, आपको मुझे उस पर बोलने का हक नहीं। इल्म की महफिल में बात अच्छी लगती है, हम दोस्तों और सहेलियों की महफिलों में बैठकर इस तरह के फतवे दे रहे होते हैं। और नोट कीजिए, सूरत अल हुजरात की भी आयते हैं और सूरत मोहम्मद आयत 33 क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना कर लो। किसी का दिल चाहता है पका हुआ खाना जल जाए, दूध उबल जाए, इतनी मेहनत से खाना लेकर आए और अभी खाया भी नहीं और एकदम बिल्ली आई और उसमें मुंह डाल गई, नहीं चाहते ना? तो क्या मैं आप अपनी पड़ी हुई नमाजें जाया करना चाहेंगे? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो हमेशा डरते हुए कांपते हुए रखिए, अल्लाह और उसके रसूल की बात बहुत अहम है। एक और ही बात ले, मुझे पता है आप पे बोझल हो रहा होगा, लेकिन यही चीज तो आपको ये सीरीज सुनने पे तैयार करेगी कि जब किसी चीज को लेने में इतनी एहतियात है कि कुरान और सुन्नत के अलावा कुछ नहीं। देखिए, अभी तक आपने कोई कॉल नहीं सुना मेरे मुंह से, मेरे उस्तादों ने कहा, किसी फुला ने कहा, वो सब इंसान है, वो सबने भी उन्हीं को कहा होगा, लेकिन हम रियल रिसोर्स पे क्यों ना जाएं? तो नोट कीजिएगा, आपने फरमाया, यकून फी आखिरी जमानी दज्जालून कज्जाबून यातूनकु मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम फैयाकुम व इयाहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिरी जमाने में दज्जाल और कज्जाब होंगे और वो तुम्हें ऐसी ऐसी अहादीस सुनाएंगे जिन्हें तुमने और तुम्हारे अबाओ अजदाद ने सुना ही ना होगा, लिहाजा इनसे अपने आप को बचाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें और फितने में डाल दें। ये सही मुस्लिम की 7 नंबर हदीस है। अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मुझे किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, मोहब्बत और खैर ख्वाही की खातिर हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरह से हमने इन सारी चीजों को बड़े खुले दिल से सुनना है और नमाज के मौजू पे माइंड नहीं करना, आपके दिल को कोई बात नहीं लगती छोड़ दीजिए, मैं तो किसी को नहीं कहूंगी कि जरूर सुने। हाँ ये कहूंगी कि जो बात कहनी है वो हक बात कहनी है और इसमें कोई शिद्दत भी बरतने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक और रिवायत बड़ी ही प्यारी, मन कज़ब अलैय मुतअम्मिदन फल यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, सही बुखारी की रिवायत है ये 110 नंबर। क्या जो शख्स मुझ पर जानते बूझते झूठ बोले वो अपना ठिकाना आग में बना ले, यानी मैं अपने ऊपर लेती हूँ इसको, अगर मैं आपको इस मौजू के सुनाने में जान बूझ के कोई झूठी हदीस बयान कर दूँ तो अल्लाह ना करे कि मेरा ये बुरा अंजाम हो। और इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 5 नोट कर लीजिए, कफा बिल मर ई कसीबा, किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है, यो हदिसा बिकुल्ली मा समिया, कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान करते। क्या आज हम आगे नहीं बयान कर देते, इल्म के साथ ताल्लुक कितना को है, फॉरवर्ड कर दो, कोई पोस्ट आई व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम में फलां पे फिर आगे भेज दो, खुद पढ़ते भी नहीं आगे भेज देते, खुद सुनते नहीं जो लेक्चर्स आगे भेजते हैं, गलत तरीका है। सेहत के साथ अगर आपको किसी स्पीकर के बारे में यकीन है कि कुरान सुन्नत की बात करते हैं, सिर्फ उनकी बात आगे करें, आपको क्या पता खूबसूरत बोलने वाला कोई बहुत सही बात भी कर रहा है। आवाजों के शहर में मत खोइए, ट्यून ना देखिए, रा ना देखिए, किसी का गरज ना बरसना ना देखिए, हक देखिए, हक किसकी जुबान में। और यकीन कीजिए इसकी एक पहचान नोट कर ले, हक में कशिश होती है, दिल नहीं भरता। लुकनत वाली जुबान से मूसा ने हक पेश किया था फिरौन को, अल्लाह ने कबूल किया। हम लंबी चौड़ी बातों और बहसों में पड़ जाते हैं। एक और रिवायत नोट कर लीजिए, आपने फरमाया जिसने मुझ पर कोई ऐसी बात कही जिसे वो जानता है कि वो झूठ है तो वो शख्स झूठों में से एक है, यानी जान बुझ के अल्लाह के नबी पर कोई बात झूठ करके भी पेश कर देना तो समझ लीजिए कि वो शख्स झूठा है, कज़ाब कहते हैं इसको हदीस की जुबान में। और ये जो रिवायत है अभी जो मैंने बताई किताब में मौजूद है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि दारुल कुतनी की ये रिवायत है, और फिर इसी तरह से आप इंशाल्लाह इस सारी चीज़ को समझ चुके होंगे, बड़े लोगों ने इस पे काम किया है। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि जो शख्स हदीस के ज़ईफ होने का ज़ोफ़ जानता है फिर भी बयान नहीं करता तो वो अपने इस फेल की वजह से गुनाहगार है और अवामुन नास को धोखा देता है, क्योंकि मुमकिन है कि इसकी बयान करदा हदीस सुनने वाला इन सब पर या इसमें से बास पर अमल करे, और मुमकिन है कि सब हदीस या अक्सर झूठी बातें हों और उनकी असल ना हो। तो याद रखिए ये मजाक नहीं, लोग कहते अच्छा हदीसें भी गरीब होती हैं, अच्छा लोग भी गरीब थे, अच्छा ये भी ज़ईफ़ होती हैं, जी होती हैं। आज हमारे लिए सर उठा के जीने की बात है, अल्लाह के नबी की हदीस पे PhDs होती हैं। वेस्ट और गैर मुस्लिम लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि दुनिया में अगर किसी एक इंसान के बोले हुए अल्फाज पे रिसर्च और मजीद काम जो हुआ है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो लिहाजा मजहूल बातें, कच्ची बातें, ज़ईफ़ बातें करके सिर्फ लोगों में शोहरत पाना ये पसंदीदा बात नहीं, सही हदीसें बहुत है इंशाल्लाह हिदायत देने के लिए, जिनको मिलनी होती है ना उनको तो एक बात से मिलती है, अबू बकर ने कौन सी ज़ईफ़ रिवायतें सुनी थी और ईमान लाए थे, ईमान तो अंदर से बोलता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने भी इसी तरह की ये जो बातें की सही मुस्लिम में जो मैंने बयान की, तो इसके बाद इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि आइमा में से किसी ने नहीं कहा कि ज़ईफ़ हदीस से किसी अमल का वाजिब या मुस्तब होना साबित है, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत कहता है। यह तवस्सुल अल वसीला नाम की किताब है उसमें, और इसी तरह ये चंद मुफस्सरीन के नाम बोल रही हूँ ताकि बात पूरी करूँ तो एक शरह सदर के साथ करूँ। जमालुद्दीन कासमी, बहुत प्यारी तफसीर है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी तफसीर कासमी, अरबी तफसीर है, मैंने खुद पढ़ी है माशाल्लाह, एक आयत हमारी दो दो तीन तीन दिन में पूरी होती थी। अगर आज मैं वो पढ़ाने लग जाऊं कम से कम मुझे 10 से 15 साल की कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपसे, सिर्फ जस्ट उसकी तफसीर को वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ाऊं। मैंने खुद अरबी तफसीर से पढ़ी, हम कई कई दिन तक एक एक आयत पे बात करते थे, आज तो लोगों के पास वक्त कहाँ है। और जिस उम्र में अमूमन किताब हाथ में आती है और कोर्स ऑफर होते हैं वो तो हमारे बुढ़ापों के दिन शुरू हुए होते हैं, शुक्र कीजिए अगर अभी भी आ गई। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं ना साइंस और उर्दू इंग्लिश में, उस उम्र में डालिए हदीस पढ़ने, तफसीर सिखाइए, फिर देखिए आपकी उम्र तक पहुंचने में इंशाअल्लाह ताला वो कुछ बन चुके होंगे। अल्लाह ताला ने वो जिस तरह हमारे दिलो दिमाग पर इस वक्त ये बड़ी बड़ी डिग्रियां डाल दी हैं ना औलादों की, डॉक्टर और डॉक्टरेट को कामयाबी कहते हैं, अच्छी बात है, शर्त यह है कि वो दीन में नमाजी भी तो रहें। बस एक आखिरी बात जिस पे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हदफ पूरा हो रहा है कि सहाबाए कराम हदीस बयान करने में कितने मुख्तात थे, क्योंकि आप देखिए ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात भी आप करें कहें उसको बेहतरीन तरीके से करें। तो ये जो बड़े खूबसूरत से नाम हैं, इलामा नववी हैं, जमालुद्दीन कासमी हैं और ये कई दूसरे नामों के साथ, सारी बात का एंड अप यही करूंगी इन मुश्किलों में डाले बगैर कि सही हदीस ही पेश करनी चाहिए। हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी की सही बात में इतना वजन है कि कोई उसके आगे बोल नहीं सका, फिर भी जिसने नहीं मानना वो ना माने। तो इलामा नववी कौन है भला, किसी ने सुना हुआ इनका नाम? शरह मुस्लिम लिखी थी, सही मुस्लिम की तफसीर इन्होंने की, जैसे कुरान की तफसीर होती है ना, हदीस की शरह होती है। शरह किसको कहते हैं? खोलना, रब इशराह ली सदरी। तो ये भी इसमें लिखते हैं कि मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन और आइमा का कहना है कि जब हदीस ज़ईफ हो तो इसके बारे में यूं नहीं कहना चाहिए कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया या आपने किया या इसके करने का हुक्म दिया या मना किया। कहते कि ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि जब आप ये बात कह देंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, और अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो आप झूठे करार होंगे। लेकिन आज तो बस अल्लाह ही हम पे रहम करे, हम खूबसूरत बातों में खो जाते हैं और कहते हैं क्या लोग हमारी हदीसें सुन के नमाजी ही बन रहे हैं ना। तो आप देखिए कि इतना बड़ा दावा किसी की खैर के लिए मैं तो नहीं कर सकती, मेरे पास तो इतना इल्म ही नहीं है। जो है थोड़ा बहुत वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। अल्लाह ताला हमें सही और ज़ईफ़ रिवायतों की पहचान दे और तमीज़ करना सिखाए, हम इलीगल बातें ना दीन की पहुँचाएँ। आप अगर इस मुल्क में तो लीगल और इलीगल के फ़र्क को तो समझते हैं ना, ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक, गवर्नमेंट से ऑफिशियली ऑर्डर है या चार मेरे जैसे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कहीं बैठ के की बाहर आपने मशहूर कर दी। तो सेहत का ख्याल रखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन मुल्कों में रहते हुए हम सब जानते हैं कि सेहत किसी बात की क्या होती है। और इसी तरह हाफिज़ इब्ने हजर अल असक़लानी, बहुत प्यारा नाम है, वो भी इस मौजू पे बात करते हैं। कहते हैं कि अहकाम हों या फजाइल, हदीस पर अमल करने में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये सब शरीयत में है। क्योंकि बस लोग कहते हैं नहीं ये काम नहीं ले सकते, फजाइल बयान कर सकते हैं, चले जन्नत की कुछ ऐसी बातें बता दें जिसमें अमल तो नहीं ना करना, लेकिन लोग सुन के हो जन्नत में सुर्ख मोतियों के महल के अंदर ग्रीन पत्थर लगे हैं, कह देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग खुश होंगे, क्यों मैं कहूँ? नहीं कहना, इसलिए कि सही रिवायतें इतनी प्यारी हैं जन्नत के बारे में कि दिल उसी पर जम जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है आप से मुझसे राज़ी हो, बेहतरीन तरीके से सच करें, थोड़ा कहें लेकिन अमल पे माइल करने लगा करें, और एक दुआ किया करें कि अल्लाह काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत बढ़ा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम। क्योंकि आप देखिए ना कि आप जितने मर्जी काबिल हो जाएं, कबूलियत ही ना हो तो क्या फ़ायदा? आप 10 खाने पकाएं लेकिन सामने वाला आपसे नाराज़ है, खाएगा? तो अल्लाह भी सिर्फ हक बात को कबूल फरमाता है आपसे और मुझसे, और रब कबूल कर ले तो बस बात ही बात बन जाती है। और अगर आप अल्लाह के नबी का वो खुतबा जो हर दर्स जिसको आप ऑफिशियली या अनऑफिशियली बात करें, आप जो करते थे, अगर मैं आपको आखिर में सिर्फ उसके अल्फाज पे ले चलूं तो आपको ये जितनी बातें आज की इस नशिस्त में हुई है ना ये समझ आ जाएंगी। यानी जैसे आजकल भी कोई भी स्पीकर है वो नहमदुहु व नुसल्ली कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ही नहमदु कहते हैं ना, अल्लाह के नबी क्या कहते थे, मैं आपको उसके अल्फाज देना चाहती हूँ कि जिसमें पूरी ये जितनी आज की बातें ना इसका खुलासा है आपके खुतबा। और एक बुक है आप लीजिए, खुतबात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के छोटे बड़े खुतबे, थोड़े लोगों में बैठ के कभी क्या दी, वो सारे वर्ड टू वर्ड उसमें सेव्ड हैं। जैसे कि आपका खुतबा हज्जतुल विदा भी बड़ा मारूफ है, तो आपके अल्फाज क्या थे? इन्नल हमद लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युद्लिल फला हादिय लहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदजी हदजु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुख्दसातुहा व कुल्ल बिदअतिन दलाला। उर्दू तर्जमा इंशाल्लाह ज्यादा आसान लगेगा हमें। बिला शुबा सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं, इससे मदद मांगते हैं, जिसे अल्लाह राह दिखाए इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अपने दर से धुतकार दे इसके लिए कोई राहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ताला है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। यहाँ तक क्या है? तारीफ। आगे क्या है? हमदो सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है, सच, और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और तमाम कामों से बदतरीन काम वो हैं जो अल्लाह के दीन में अपनी तरफ से निकाले जाएं, और हर बिदत गुमराही है। देखिए, बिदत बिदा से है, अलबदी अल्लाह का नाम है ना, नई चीज़, रोल मॉडल। दुनिया की चीज़ों में लेटेस्ट चीज़ अच्छी होगी, आईफोन एक्स आईफोन 3 से अच्छा होगा। दीन में लिखिए बैकवर्ड चलिए, जितना आपका ताल्लुक बिल्कुल माजी के असलाब, यानी सहाबा की बात कोट कर, तफसीर इब्ने अब्बास सबसे ऑथेंटिक होगी, क्यों बोला, सहाबी की है, आज बहुत अच्छी भी हैं, आपके आज के तकाजों की भी हैं, लेकिन शक हो सकता है कि उसमें कोई कमी बेशी हो, तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं हमसे राजी हो, रजामंदी वाले काम करवाए। सीखा कि आज के पूरे सेशन में नंबर एक, दीनो आखरत की कामयाबी के लिए नमाज की पाबंदी लाजिम है, नमाज की अदायगी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना है, तहारत का एहतमाम करना है, और कुरान और हदीस दोनों उलूम को हासिल करना है। यही है हमारे दीन की असल,